एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम सब मिलकर ज्ञान की एक और कह सकते हैं गहरी डुबकी लगाते हैं। आज हमारे सामने हैं 19वीं सदी के एक फ्रांसीसी विचारक एलेक्सिस डी टॉकविल की कालजयी कृति डेमोक्रेसी इन अमेरिका, एक ऐसी किताब जो लिखी तो गई थी करीब करीब 200 साल पहले, लेकिन जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ अमेरिका के इतिहास की किताब नहीं है, जैसा आपने कहा, ये तो जैसे लोकतंत्र का एक्सरे है। टॉकविल ने लोकतंत्र की धमनियों में बहते खून, मतलब उसकी ताकत, और साथ ही उसमें पल रहे कह सकते हैं रोगों यानी उसकी कमजोरियों, दोनों को बड़ी बारीकी से देखा। आज जब दुनिया भर में लोकतंत्र नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब टॉकविल को पढ़ना मुझे लगता है और भी जरूरी हो जाता है।
हाँ, सही कहा, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों की नब्ज पकड़ ली थी जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं, जैसे बहुमत का दबदबा या फिर समाज से कटते जाने का खतरा, जिसे उन्होंने व्यक्तिवाद कहा। ये किताब दिखाती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने या सरकार चुनने तक ही सीमित नहीं है, है ना?
जी बिल्कुल, ये हमारी सोच, हमारे रिश्तों, हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है।
और शायद सबसे बड़ी बात, एक्सपर्ट स्पीकर।
हाँ,
ये किताब हमें आजादी और बराबरी के बीच के उस नाजुक संतुलन को समझने में मदद करती है।
सही, जिसके तार पर हर लोकतांत्रिक समाज एक तरह से चलने की कोशिश करता है।
तो आइए आज इसी आईने में हम अपने समय की शक्ल देखने की कोशिश करते हैं।
जरूर।
चलिए शुरुआत करते उस शख्स से जिसने ये आईना हमें दिखाया। एलेक्सिस डी टॉकविल आखिर थे कौन और उनकी नजर में ऐसी क्या खास बात थी?
एलेक्सिस डी टॉकविल 1805-1859 फ्रांस के एक कुलीन, मतलब एरिस्टोक्रेटिक परिवार से थे। सोचिए, वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां पुरानी राजशाही टूट रही थी और लोकतंत्र की लहर उठ रही थी।
अच्छा, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद का उथल पुथल वाला माहौल।
जी हाँ, इस वजह से उनकी स्थिति बड़ी अनोखी थी। वो गुजरे जमाने के मूल्यों को भी समझते थे और आने वाले बदलाव की आहट भी कह सकते हैं सुन सकते थे।
और इसी दौराहे पर खड़े होकर उन्होंने अमेरिका का सफर किया 1831 में। सुना है सिर्फ 25 साल के थे तब।
हाँ बिल्कुल, कहने को तो वो वहां की जेल व्यवस्था पर शोध करने गए थे, पर उनका असली मकसद वो कहीं ज्यादा बड़ा था।
अच्छा, क्या था वो?
सही कहा आपने पहले, उनका असली इरादा था अमेरिकी लोकतंत्र की प्रयोगशाला को समझना। एक बाहरी दर्शक, एक यूरोपीय कुलीन होने के नाते, वो उन चीजों को देख पाई जो शायद उस समाज में रहने वालों को रोजमर्रा की जिंदगी में नजर नहीं आती।
जैसे कोई मछली पानी के बाहर आकर ही पानी को समझ पाती है।
बिल्कुल वैसा ही, उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें एक आलोचनात्मक दूरी दी, एक क्रिटिकल डिस्टेंस।
यानी वो सिर्फ तथ्यों को नहीं देख रहे थे बल्कि उनके पीछे छिपे पैटर्न्स और भविष्य की संभावनाओं को भी भांप रहे थे।
जी, उनकी विश्लेषण की शैली भी अनोखी थी। उन्होंने आंकड़े देखे, लोगों से बात की, इतिहास पढ़ा और फिर उस सब पर मतलब दार्शनिक नजरिए से सोचा। बिल्कुल, उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर नहीं देखा, नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक शक्ति के रूप में देखा जो इंसान के दिलो दिमाग, उसकी आदतों, उसके रिश्तों, सब पर असर डालती है। और इसी गहराई ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका को इतना खास बना दिया है।
तो अब आते हैं सीधे किताब पर, इसका सार क्या है, मतलब टॉकविल का मुख्य संदेश क्या था?
देखिए, किताब का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि स्थितियों की समानता, इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस, जिसे हम मोटे तौर पर लोकतंत्र कह सकते हैं, इतिहास की एक ऐसी ताकतवर लहर है जिसे रोका नहीं जा सकता। ये पोली दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है और अमेरिका इसका सबसे जीता जागता, सबसे विकसित उदाहरण था उस वक्त।
अच्छा,
टॉकविल मानती थी कि ये बदलाव होकर रहेगा, सवाल बस ये है कि ये हमें किधर ले जाएगा।
लेकिन ये किताब सिर्फ लोकतंत्र का गुणगान तो नहीं करती, है ना? मैंने सुना है इसमें कुछ चेतावनियां भी छिपी हैं।
बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है मेरे हिसाब से। टॉकविल लोकतंत्र की उपलब्धियों जैसे आजादी, अवसर, समृद्धि को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो उसके अंधेरे कोनों को भी उजागर करती हैं। वो आगाह करती हैं कि इसी लोकतंत्र से नई तरह की तानाशाही भी पैदा हो सकती है, लोग भेड़चाल का शिकार हो सकते हैं और समाज में एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन आ सकता है। उनका बड़ा सवाल यही था, इस बराबरी के दौर में हम आजादी को कैसे जिंदा रख सकते हैं।
सुना है ये किताब दो हिस्सों में है,
क्या दोनों का फोकस अलग अलग है?
हाँ, मोटे तौर पर पहला हिस्सा 1835 ज्यादातर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, उसके कानूनों, संस्थाओं पर केंद्रित है। इसी में वो अपने मशहूर सिद्धांत बहुमत की निरंकुशता, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी की बात करती हैं।
अच्छा, वो पहले हिस्से में है
जी। और दूसरा हिस्सा 1840 समाज और संस्कृति पर लोकतंत्र के असर को देखता है, लोगों की सोच, उनकी भावनाएं, जैसे व्यक्तिवाद, उनके रीति रिवाज। और इसी में वो अपनी सबसे डरावनी चेतावनी देती हैं, सॉफ्ट डेस्पोटिज्म।
उनका मकसद क्या था ये सब लिखकर? वो किसे समझाना चाह रहे थे?
मुख्य रूप से यूरोप, खासकर अपने देश फ्रांस के लोगों को। वो चाहती थीं कि यूरोप अमेरिका के तजुर्बे से सीखे, उसकी कामयाबियों से भी और उसकी नाकामियों से भी, ताकि वो अपने लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। अमेरिका उनके लिए भविष्य की एक प्रयोगशाला जैसा था। समझ गया। तो चलिए अब कुछ प्रमुख विचारों में और गहरे उतरते हैं। टॉकविल की सबसे जानी मानी चेतावनियों में से एक है बहुमत की निरंकुशता। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ राजनीतिक बहुमत की बात है क्या?
नहीं, यही तो खास बात है। टॉकविल का कहना था कि लोकतंत्र में खतरा सिर्फ सरकार के जुल्म का नहीं, बल्कि बहुमत की राय के जुल्म का भी है। ये एक सामाजिक और बौद्धिक दबाव है।
सामाजिक और बौद्धिक, कैसे?
जब समाज में किसी एक सोच या राय का इतना दबदबा हो जाए कि उससे अलग सोचने या बोलने वाला अकेला पड़ जाने या मजाक उड़ने से डरने लगे, तो समझिए कि विचारों की असली आज़ादी खत्म हो गई। कानून भले ही आपको बोलने की इजाज़त दें, पर समाज आपको चुप करा सकता है।
ये तो आज के ज़माने में बहुत प्रासंगिक लगता है, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ ज़रा सी अलग राय रखने पर लोग ट्रोलिंग या कैंसिल कल्चर का शिकार हो जाते हैं। क्या टॉकविल ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी?
एक तरह से हाँ। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में उन्हें कहीं और से ज्यादा विचारों की कम स्वतंत्रता और चर्चा की वास्तविक स्वतंत्रता की कमी महसूस हुई।
ये तो चौंकाने वाली बात है। अमेरिका तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गढ़ माना जाता था।
बिल्कुल, उनका मतलब यही था कि सामाजिक दबाव इतना ज्यादा था कि लोग खुलकर अपने मन की बात कहने से कतराते थे।
तो इस सामाजिक दबाव से बचने का कोई रास्ता भी सुझाया उन्होंने?
हाँ, उन्होंने कुछ चीजों की तरफ इशारा किया, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब स्थानीय स्तर पर लोगों का शासन।
अच्छा।
इससे बहुमत के लिए हर जगह अपनी मर्जी थोपना मुश्किल हो जाता है, और खास तौर पर न्यायपालिका और वकीलों की भूमिका।
वकीलों की भूमिका, वो कैसे?
वो एक तरह से बहुमत की जो भावनाएं होती हैं, जो आवेग होते हैं, उन पर ब्रेक लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे, नागरिकों का आपस में मिलकर संगठन बनाना।
इससे जुड़ा हुआ उनका एक और महत्वपूर्ण विचार है, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। ये क्या है और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक क्यों माना उन्होंने?
देखिए, टॉकविल व्यक्तिवाद को स्वार्थ से थोड़ा अलग मानती हैं।
स्वार्थ तो वो कहती हैं हमेशा से रहा है।
हाँ, वो तो है,
लेकिन व्यक्तिवाद लोकतंत्र के देन है। ये एक ऐसी भावना है जहाँ लोग धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं और अपने छोटे से दायरे, अपने परिवार और दोस्तों में सिमट जाते हैं। वो सार्वजनिक मामलों में रुचि लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि समाज की बड़ी समस्याओं से उनका क्या लेना देना।
अच्छा।
टॉकविल को डर था कि इससे समाज का ताना बाना बिखर जाएगा, लोग एक दूसरे से अजनबी हो जाएंगे।
लेकिन इससे निपटने का तरीका भी तो उन्होंने देखा होगा अमेरिका में, कुछ तो हल होगा। हाँ, और ये उनका सबसे सकारात्मक अवलोकन था, मुझे लगता है। उन्होंने देखा कि अमेरिकी लोग हर छोटी बड़ी बात के लिए लगातार आपस में मिलकर संघ, एसोसिएशंस बनाते रहते हैं, मोहल्ले की सफाई के लिए, स्कूल के लिए, किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए या सिर्फ मनोरंजन के लिए।
हर चीज के लिए?
हाँ, लगभग हर चीज के लिए। ये संगठन लोगों को साथ लाते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सिखाते हैं और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय बनाते हैं। टॉकविल ने इन नागरिक संघों को लोकतंत्र का महान मुक्त विद्यालय कहा। ये व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा तोड़ थे।
यानी समाज से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है किसी न किसी समूह या संगठन का हिस्सा बनना। ये तो भारत में भी हम देखते हैं।
बिल्कुल।
जैसे स्वयं सहायता समूह हो या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन।
सही कहा। ये लोगों को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर साझा भलाई के लिए सोचना सिखाते हैं। टॉकविल ने इसे सुसमझित स्वार्थ भी कहा, मतलब लोग ये समझते हैं कि दूसरों की मदद करके या समाज के लिए कुछ करके आखिरकार उनका अपना भी भला होता है।
ये दिलचस्प है, लेकिन इन सकारात्मक बातों के साथ टॉकविल ने एक और बड़ी चेतावनी दी थी, खासकर अपनी किताब के दूसरे हिस्से में, नरम निरंकुशता। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, नरम और निरंकुशता एक साथ कैसे?
हाँ, यही तो इसका खतरा है। ये कोई पुराने जमाने की हिंसक तानाशाही नहीं है।
नहीं,
ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल। टॉकविल को डर था कि भविष्य में जब लोग बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी और भौतिक सुख सुविधाओं में डूबे होंगे, तो वो अपनी आज़ादी धीरे धीरे एक ऐसी सरकार को सौंप देंगे जो उनकी सारी जरूरतों का ख्याल रखने का वादा करेगी।
अच्छा, एक पालक सरकार जैसी?
हाँ बिल्कुल, एक गार्डियन स्टेट जो उन्हें हर मुश्किल से बचाएगी, उनकी सुरक्षा करेगी, उन्हें खुश रखेगी।
सुनने में तो ये अच्छा लगता है, इसमें बुराई क्या है भला?
बुराई ये है कि ये सरकार लोगों से उनकी जिम्मेदारी छीन लेगी, उन्हें सोचने और फैसले लेने की तकलीफ से, कह सकते हैं, आज़ाद कर देगी। वो लोगों को हमेशा बच्चे की तरह रखना चाहेगी। टॉकविल ने लिखा कि ऐसी सरकार अत्याचार नहीं करती, लेकिन ये दबाती है, कमजोर करती है, बुझाती है और लोगों को मूर्ख बनाती है।
अरे बाप रे।
जब तक कि हर राष्ट्र भीरू और परिश्रमी जानवरों के झुंड से बेहतर कुछ नहीं रह जाता जिसका चरवाहा सरकार है।
बाप रे, मतलब लोग आराम और सुरक्षा के बदले अपनी सोचने और काम करने की आज़ादी चुपचाप गंवा देंगे।
हाँ बिल्कुल, सुरक्षा और सुविधा के लालच में ये लोकतंत्र के लिए एक धीमा जहर है। टॉकविल की ये भविष्यवाणी आज के दौर में, जहां हम बहुत सी चीजों के लिए सरकार या टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं, बहुत सोचने पर मजबूर करती है।
सचमुच। तो अगर हम टॉकविल के मुख्य संदेशों को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे, मतलब मुख्य बातें?
लोकतंत्र इन दोनों को पाना चाहता है, पर बराबरी पर ज्यादा जोर कभी कभी आज़ादी को खतरे में डाल सकता है। वो संतुलन साधना जरूरी है।
ठीक है।
दूसरा, बहुमत की निरंकुशता का खतरा न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक और बौद्धिक भी। हमें अलग आवाजों को दबाने वाले सामाजिक दबाव से सावधान रहना होगा।
तीसरा,
व्यक्तिवाद का खतरा और उसका इलाज नागरिक संगठन और सामुदायिक भागीदारी, समाज से जुड़ना लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है।
और चौथा, वो नरम निरंकुशता वाली बात?
जी, नरम निरंकुशता की चेतावनी आराम और सुरक्षा के लिए अपनी सोचने और फैसले करने की आज़ादी को धीरे धीरे खो देने का खतरा।
और शायद एक और बात आपने कही थी, रीति रिवाजों और नैतिक मूल्यों का महत्व।
हाँ बिल्कुल, टॉकविल मानते थे कि लोकतंत्र सिर्फ अच्छे कानूनों से नहीं चलता, उसे अच्छे नागरिकों की भी जरूरत होती है जिनके अंदर जिम्मेदारी की भावना हो, कुछ नैतिक आधार हो।
ये सारे विचार बहुत गहरे हैं, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं या लागू कर सकते हैं?
कई तरीकों से। पहला तो है नागरिक जुड़ाव। टॉकविल हमें याद दिलाते हैं कि अपने आस पड़ोस, अपने शहर या अपने समाज के मामलों में थोड़ी दिलचस्पी लेना क्यों जरूरी है। किसी स्थानीय समूह या पहल में शामिल होना, ये सिर्फ समाज के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए भी अच्छा है। ये हमें उस अकेलेपन से बचाता है जिसके बारे में वो बात करते हैं।
सही का। और दूसरा?
दूसरा, आलोचनात्मक सोच, मतलब भीड़ चाल से बचना। सिर्फ इसलिए किसी बात को ना मान लेना कि सब लोग मान रहे हैं।
हाँ, ये जरूरी है।
सवाल पूछना, अलग नजरिए से सोचना, ये बहुमत की निरंकुशता का मुकाबला करने का तरीका है।
तीसरा, सरकार की भूमिका पर विचार करना। ये सोचना कि हम कितनी सुरक्षा और सुविधा चाहते हैं और उसके बदले कितनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी छोड़ने को तैयार हैं।
क्या हम हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर होना चाहते हैं या खुद भी पहल करना चाहते हैं? ये नरम निरंकुशता वाली बहस का सार है एक तरह से।
बिल्कुल, ये किताब हमें लगातार जागरूक रहने और सवाल पूछते रहने की प्रेरणा देती है।
सही।
इस पूरी चर्चा के बाद अगर आपको कोई एक ऐसी बात बतानी हो जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया या सोचने पर मजबूर किया, तो वो क्या होगी?
मेरे लिए शायद नरम निरंकुशता की अवधारणा सबसे ज्यादा असरदार रही। ये सोचना कि कोई व्यक्ति लगभग 200 साल पहले आज के जैसे हालात की कल्पना कर सकता था।
हाँ,
जहाँ हम आराम और सुविधा के बदले धीरे धीरे अपनी सोचने समझने की क्षमता और आज़ादी को दाव पर लगा सकते हैं। ये वाकई बहुत दूरदर्शी था, बहुत ज्यादा।
सही का। और आपके लिए?
मेरे लिए शायद नागरिक संगठनों पर टॉकविल का जोर, ये विचार कि लोकतंत्र की असली जान सिर्फ चुनावों या संसद में नहीं है, बल्कि आम लोगों के आपस में मिलकर छोटे छोटे संगठन बनाने और मिलकर काम करने में बसती है। ये बहुत शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला विचार है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की ताकत हम सब नागरिकों के हाथ में है।
बिल्कुल सही। लोकतंत्र कोई बनी बनाई चीज नहीं जिसे बस इस्तेमाल करना है। ये तो एक बगीचे की तरह है जिसे लगातार सींचना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है।
बहुत अच्छा कहा आपने।
तो चलिए आज की इस ज्ञान गोष्ठी को हम श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। आज के दौर में जहां जानकारी इतनी आसानी से मिलती है और सोशल मीडिया का प्रभाव इतना गहरा है, क्या हम सच में ज्यादा स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं या टॉकविल की बहुमत की निरंकुशता का दबाव एक नए रूप में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।